संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के दान में वे वर्धमान महान जिंद चले हमारे ध्यान में। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्ष दे। समय सार परमागम का निजराधिकार की चर्चा चल रही है, जिसमें पिछले व्याख्यान में ये चर्चा हुई थी कि पूर्व जो वृद्ध कर्म बंधे हैं उनका खिर जाना, उनका उदय में आके खिर जाना, उदीर्ण होके खिर जाना, उसका नाम है वृद्ध निद्रा। और आत्मा के अंदर में जो अशुद्धि है उसका कम होना, अशुद्धि का वृद्धि होना, यह है भाव निद्रा। ये सामान्य बात के बाद में प्रसन्न ऋषि ज्ञानी धर्मात्मा के भोगों के संयोग में भी निर्जरा होती है, और अज्ञानी जीव के कितना ही तप त्याग करे तो भी उसके निर्जरा नहीं होती। इससे एक बात सिद्ध होती है कि बाहर के किसी क्रियाकांड से जो हम तप त्याग का नाम देते हैं उससे तो न वास्तव में बंध होता है न निद्रा होती है, क्योंकि तो स्पष्ट परद्रव्य की क्रिया है। अब उसके साथ जैसे भाव होते हैं तो परद्रव्य के लक्ष्य से जो भी भाव होंगे या तो शुभ होंगे या अशुभ होंगे। तो अशुभ भावों से तो बंध होता ही है, सारी दुनिया मानती है निद्रा नहीं होती है। शुभ भावों से भी पुण्य बंध होता है, निद्रा नहीं होती है। क्योंकि ज्ञानी के उस भगवान आत्मा का आश्रय है, इसलिए जितनी प्रकृतियों का आश्रय और बंध रुक गया है, यदि वे प्रकृति की सत्ता में हो गए तो भी किसी न किसी तरीके से काल पा करके उदय में आकर खिर जाने वाली है, और नवीन बंध उसके होता नहीं है, इसलिए उसे निद्रा कहते हैं। निर्जरा तो नाम झरने का है, तो ज्ञानी अज्ञानी के सभी के ही होते हैं, लेकिन जो अपने खराला में पंक्ति आती ना कि निज काल पाए विधि झरना तासु निज काज न सरना। निज काल पाए विधि झरना, अपना समय पाकर कर्मों का झर जाना, ये निर्जरा तो है लेकिन इससे निज काज न सरना, अपना कोई कार्य सिद्ध नहीं होने वाला है। अनाधिकाल से हो ही रहे, जो अपना जितना स्थिति बांधेगा उतना उदय में आएगा, उदय में आकर के खिल जाएगा। इसमें कौन सी गजब की बात है, ऐसा भी हो रहा है तो या फिर कहते हैं कि बुद्धि पूर्वक शुद्धोपयोग के माध्यम से जो कर्म नष्ट होते हैं, ऐसा नहीं कि समय के पहले ही, समय के पहले उदीर्णादि होकर के हो अथवा समय पर भी हो तो भी आगामी बंध नहीं हो तो उसे निर्जरा कहते हैं। क्या वो तो सभी पार उपास की बात यहां नहीं है क्या? समय पर आगे पका अपने आप, समय के पहले समय पर आकर के भी करा, यही तो बता रहे ना कि ज्ञानी के पुराने क्रम तो कुछ समय उदय में आकर खिलते जाते हैं, नहीं बनते नहीं, इसलिए निर्जरा कहते हैं। ऐसी निर्जरा चौथे गुणस्थान से ही विद्यमान है। तत्वार सूत्र में आते ना वो सम्यक दृष्टि श्रावक वृतानंत वियोजक, इन लोगों में आगे आगे का असंख्य गुण निर्जरा। तो सम्यक दर्शन होते ही वो निर्जरा चालू हो गई है, ऐसा तो नहीं लिखा कि जब वो सिद्धोपयोग के काल में होगा तो निर्जरा होगी, अगर सिद्धोपयोग के काल में नहीं होगा तो निर्जरा नहीं होगी, ऐसा तो नहीं। तो प्रति समय निर्जरा है ना, तो ऐसी निर्जरा निरंतर ज्ञानी के विद्यमान है, ये बात कही। और उन्होंने ये कहा क्योंकि एक ज्ञानी के ज्ञान और वैराग्य का ही बल है ना। बंधे न ज्ञानी कर्म से कैसे? यह सामर्थ्य ज्ञान की सामर्थ्य और वैराग्य का बल जानिए है ना। बंधे न ज्ञानी कर्म से बल विराग अरु ज्ञान, यद्यपि सेवे विषय को तद्यपि असेवक जान। जब अपना वैराग्य बल, और इसके दो उदाहरण दिए थे याद हो तो। ज्ञान के लिए उदाहरण यह दिया था कि वैद्य जैसे जहर को खा करके भी मरता नहीं है, ऐसे ज्ञानी भोग भोगते हुए भी बंधन को प्राप्त नहीं होते हैं। और वैराग्य के बल के लिए उदाहरण दिया था कि जैसे मद्य पीने वाला भी उसे शराब नहीं चढ़ती है यदि अरुचि भाव से पिए, अरुचि भाव माने वैराग्य, ऐसे ही वैराग्य जिनके अंदर विद्यमान है और पूर्व उदय के अनुसार कोई भोगादि की क्रिया भी देखी जा सके तो भी वो बंध को प्राप्त नहीं होता। और तीसरा उदाहरण दिया था प्राकरणिकता, भले ही काम करने वाले अनेक लोग हों लेकिन जो उसको कराने वाला है, जो उसका मालिक है, जो आज्ञा देने वाला है, जिसके लिए काम किया जा रहा है, वही उसका करता है और वही उसका भोगता है, बाकी करने वाले कर्ता भोगता नहीं। यहां तक चर्चा पहले व्याख्यान में हुई। अब आगे जो नजर अधिकार की बात चल रही है वो क्या है? बोले वो कह रहे ऐसा सुन के कोई आदमी ऐसा माने कि मैं तो सम्य ऋषि हूं, और सम्य ऋषि को तो आश्रम नहीं होता है भोगों से और निर्जरा होती है, तो मैं भोगों से क्यों डरूं और जम के भोग भूंगू, तो उसका क्या होगा? यदि ऐसी जिसकी बुद्धि है वो सम्यक दृष्टि ही नहीं है, क्योंकि सम्यक दृष्टि के भोगों में से शुभ बुद्धि निकल गई वो तो कर्म के उदय से उसके जीवन में भोग देखे जाते हैं। मैं खूब भोगूं ऐसी भावना उससे कभी तीन काल में नहीं होती है, वो तो ये भोगों से मैं कब छूटूं ऐसी भावना उससे होती है। कभी जब जब मैं मेरे पहले पहले छंद पड़ा तो मेरे को विकल्प आया कि ऐसा भी कोई होता होगा सोचने वाला क्यों। लेकिन एक दफे एक महाराष्ट्र से मुझे मिलने का मौका मिला तो उनने कहा कि पंडित जी हमें आप ये बताइए कि सम्य दर्शन की प्राप्ति कैसे है। कोई घटना है तो मैंने कहा महाराज सम्य दर्शन के बिना तो वित्तारित होते ही नहीं, आप कैसी बात कर रहे हैं, आपको सम्य दर्शन नहीं है क्या, आत्मा का अनुभव नहीं है क्या? तो भैया हमें क्या पता, हम क्या जाने का, हमें बताओ, हमने सुना है कि तुम बहुत बताते हो और ऐसा बात है हम तुम्हें सीखने के लिए तुम्हें बुलाया। लेकिन मैंने कहा कि भाई मुनि धर्म तो इसके बिना होता ही नहीं है, शास्त्र में ऐसा लिखा, बोले यदि ऐसा है तो होगा सम्य दर्शन। यदि मुनि क्योंकि होता ही है तो होगा, आत्मा का अनुभव भयंकर मूर्ति मुनियों को होता है तो हमें भी होता होगा, बताओ कैसे होता है, बताओ हम करने कैसे करेंगे। अब हमें ना तो ऐसे ही जैसे वो मान लिया कि मैं तो सम्य दृष्टि हुई, सम्य दृष्टि नहीं है, और ऐसे लाखों लोग हैं जो अपने को सम्य दृष्टि मानते हैं। बहुत स्पष्ट बात है कि जो अपने को वृत्ति मानता है वो अपने को सम्य दृष्टि तो मानता ही है, क्योंकि शास्त्र में तो बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखी कि सम्य दर्शन चौथे गुण स्थान में होता है और व्रत पांच में से शुरू होते हैं, छह में सात में आगे होते हैं। ऐसा कोई ये मानता मैं पांचवी क्लास में पास हूं तो मैं चौथी क्लास नहीं हूं, ऐसा कौन मानता है? ये तो मानता ही है ना, उसका अर्थ ऐसा हो गया कि नहीं हो गया। तो जितने भी अपने को वृत्ति मानने वाले लोग हैं वो सब अपने को सम्य दृष्टि मानते हैं, और सम्य दर्शन की परिभाषा विषय वस्तु की दृष्टि से बात करके देखते हैं तो वो उन्हें कुछ ख्याल में ही नहीं है। तो ऐसा नहीं समझना तो ऐसे लोग हैं ही नहीं, तो ऐसे लोग भी हैं कि जो अपने को वृत्ति नहीं मानते हैं और फिर सम्य दृष्टि मानते हैं। और सम्य दर्शन क्या चीज है यही खबर नहीं है ऐसे लोगों के लिए। फिर आचार्य यहां सावधान कहते हैं, देखो एक कलश है बहुत सुंदर, जिसका हिंदी अनुवाद पढ़ता हूं मैं, मैं स्वयं मैं सम्यक दृष्टि हूं, मैं बंध से विरहित सदा, 137वां छंद है। तो मैं स्वयं सम्यक दृष्टि हूं, हूं बंद से विरहित सदा, क्योंकि मैं सम्यक दृष्टि हूं और सम्यक दृष्टियों को बंद होता नहीं है, इसलिए मुझे भी बंद नहीं है। तो मूल संस्कृत में है, देखो, सम्यक दृष्टि स्वयं मय महम जातु बंदो न मे साधानो पुलक बदना रायण चरंतु। देखो तो संस्कृत जो जानते हैं थोड़ी बहुत, उस छंद का भाव उनके ख्याल में आएगा। अहम सम्यक दृष्टि, मैं सम्यक दृष्टि हूं, न जातु बंधा मे स्यात्, मेरे को तो कभी बंद होता ही नहीं है, ऐसा मानकर इत्तानो पुलक बदना उठाया है मुख जिसने और फुलाए हैं गाल जिसने, अलग अलग इस कार से पुलक बदना देगा ना, पुलक बदना अभिमान की मुद्रा की बात है, कह रहे हो अभिमान की मुद्रा को उन्होंने बोला है, उत्तानो लगा ना उठाया है मुख जिसने और फैलाए हैं गाल जिसने, मन में अपने को बहुत महान मानता है और फैलाए हैं गाल, माने मैं सुनना दृष्टि हूं, तुम सुनते क्या हो, मैं वृत्ति हूं, मैं महावृत्ति हूं, मैं जो कहूंगा वो होगा, कि इसका नाम है पुलक बदना, फुलाना भी है और एकदम इसके देश में बोलना आसमे जो कुछ भी अभिमान भरे बोलों को, तो ऐसा कौन करेगा, वो क्या कहता है राज अनुपचाचरंतु, और राज का आचरण करता है, बोल शुभराज अशुभराज की तो बात ही नहीं है, और मानता मैं सम्मत इसमें हूं, मुझे बंद होता ही नहीं। आगे देखो, आगे पर भी कठिन बात लिखी है, आलम बंताम समति परताम। आप एक कह सकते हैं कि ये बात तो सम्यक दृष्टियों की चल रही है, आप बीच में मुनिराजों को क्यों ले आते हैं, क्यों? तो ये जो लिखा कि आलम बंताम समितिम, जब समितियों को पालते हैं तो समितियों को मुनि पालते हैं क्या, ग्रस्त बोलो, समिति को पालने वाले हैं, गुप्ती को पालने वाले हैं, तप को तपने वाले हैं, तो कौन है बाबू साहब, बाबू जी मुनिराज ही हुए ना, इसका मतलब उनके तो मुनिराज सम्यक दृष्टियों की बात है, अपने को वृत्ति मानते हैं, महावृत्ति मानते हैं, सम्यक दृष्टि मानते हैं, के अज्ञाति पापा वे आज भी साक्षात पाप स्वरूप है, ऐसा है पापाकार समझते हैं, ये आज के जमाने का पापा नहीं है, ये पुराने जमाने का पापा है, पापा माने पाप, और पाप का के रूप कैसे चलेंगे, रामा रामऊ रामा, ऐसे पापा पापऊ पापा, ये पाप का बहुवचन है, माने बहुत पाप, ढेर सारे पाप, ये साक्षात पाप के पिंड है, उन्हें पापी नहीं कहा, पापी में और पापा में क्या फर्क है भैया, आपा में तो ई की आ की मात्रा है और पापी में ई की मात्रा है, क्यों एक वचन बहुवचन का नहीं, पापी माने माने तो जो पाप करे वो पापी, और पापा माने जो स्वयं साक्षात पाप स्वरूप ही है, चीनी जो है वो बिल्कुल मिठास स्वरूप है, तो चाय चीनी के संयोग से मीठी होती है, थोड़ा बहुत पाप करे वो पापी, अरे पाप ही का पिंड हो समझ गया ना, इसका नाम पापा, आज की भाषा में जो अपनी माता जी थी ना पहले, वे क्या हो गई है अब, मम्मी, और जो पिताजी थे वे हो गए हैं पापा, और पिताजी कहें तो ऐसा लगता है कि मेरा अपमान हो गया, और बच्चे अपने पापा पापा कहें तो अंदर में कितनी खुशी होती, गलगलिया खींचती है। लेकिन पापा का क्या अर्थ होता है एक दफे वो अच्छी तरह समझे तो जिंदगी में शायद पापा कहलाने के लिए तैयार ही नहीं हो। इससे बड़ी गाली दुनिया में और क्या हो सकती है। ये अज्ञापी पापा किनके लिए कह रहे, जो समिति को पालते हैं तो किसी जीवों की हिंसा करते होते उनकी बात होती तो समिति के पालने वालों को कहते। एक चींटी ना मर जाए उसका ध्यान रखते हैं, एक शब्द भी झूठ नहीं बोलते हैं, एक नए पैसे की चोरी नहीं करते, ना सेल टैक्स की ना इंटरेस्ट की। क्यों? सेल कुछ कुछ बेचते ही नहीं है, कुछ कार्यक्रम इनकम ही नहीं है, शस्त्री के भी त्यागी है और तनकर एक बस एक धागे के बराबर भी परिग्रह नहीं है, और उनके लिए क्या कर रहे हैं ये अद्यापि पापा, वे आज भी साक्षात पाप स्वरूप हैं। जब हिंसा झूठ चोरी किसी तरीके से कोई पाप उनने नहीं किया तो वे पापी कौन कौन जी, वो पाप का बाप है ना, वो तो किया। क्या वो पाप का बाप, विधेयन मिथ्या तो बोलते हैं, पर में एकत्व बुद्धि, पर में स्वामित्व बुद्धि, पर में कर्तृत्व बुद्धि, पर में भोक्तृत्व बुद्धि, ये मिथ्यात नामक महापाप जिनके विद्यमान है। तो किन मिथ्या ऋषियों की बात चल रही है, ये उन मिथ्या ऋषियों की बात नहीं है कि जो मिथ्या ऋषि हैं और अपने को मिथ्या ऋषि मानते हैं, उनकी बात नहीं है अन्ना जी। तो किन मिथ्या ऋषियों की बात है, तो जो है मिथ्या दृष्टि और अपने को सम्यक दृष्टि मानते हैं, अनुवृत्ति मानते हैं, महावृत्ति मानते हैं, उनके लिए कहा जा रहा है। पर आप देखना, अब तो संस्कृत के विद्वान लोग हो ना, इसको मिलान करना कि इसमें ये अर्थ है कि नहीं है। देखो आलम बनताम समिति परताम, ये आलम बनताम है ना, इसे पीछे से निकालो, रागणो प्या तरंती। आलम बनता माने महावृत आदिक का आलम्बन लेते हैं, समिति आदिक का पालन करते हैं, या तो भी अद्यापि पापा, क्योंकि वे आज भी पाप स्वरूप हैं। आत्मानम बहरा, क्यों? आत्मा के अवगाहन से बेरहित हैं, उन्हें आत्मा को उन्होंने नहीं जाना, आत्मा को नहीं देखा। और कैसे संति सम्यक्ति रिक्ता सम्यक दर्शन से रहे, उसी को अपन ने यही पढ़ा था। देखो मैं स्वयं सम्यक दृष्टि हूँ, बंद से दृहित सदा, यह मान कर अभिमान में पुलकित बदन मस्तक उठा। जो समिति आलम में महावृत आचरे पर पाप मैं, दिग मूढ़ जीवों का अरे जीवन नहीं अध्यात्म। अपने को अध्यात्मी मानते हैं, लेकिन है कौन से जीव, दिग्मूर माने जिनको कुछ पता नहीं कि क्या रास्ता है, कहाँ जाना है ना। दिग्मूर मतलब जिन्हें अपनी दिशा का ज्ञान नहीं है, पूरब की तरफ जाना है और पश्चिम की तरफ जा रहे हैं, आत्मा की तरफ जाना है और पर की तरफ जा रहे हैं, तो दो पेट की तरफ जाना है और सर्वोपयोग की तरफ जा रहे हैं, तो उन्हें अपने दिशा का भी सही ज्ञान नहीं है, ऐसे लोग तो क्या करें। यहाँ तो आप ये कहते हो कि सम्यक दृष्टि के भोग निद्रा के हेतु हैं, पर यहाँ समिति पालने वाले और महावृत का आचरण करने वालों को दिग्मूढ़ कहते हो और पापी कहते हो, तो हमारी क्या हिम्मत है, हमारी क्या हैसियत है जो हम कहें। क्यों? ये तो महावृतधारी अमृतचंद्राचार्य ही कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? तो महावृतधारी ही कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। हम तो सिर्फ उसको पढ़ रहे हैं, उसका अर्थ कर रहे हैं। क्यों? तो कौन कहने वाले तो अमृतचंद्राचार्य है ना, तो स्वयं महावृतधारी हैं। और जिन्होंने जीवन भर झूठ नहीं बोलने की प्रतिज्ञा की है, दो तरफ से बात कहते हैं कि सम्मा दर्शन यदि वास्तव में अंतर में हो तो भोगों के बीच में रहते हुए भी वो बंध नहीं है, पापी नहीं है, चालू कर ना। और यदि वो सम्य दर्शन से रिक्त हैं तो समिति पालें, महाव्रत आचरें, तो भी पापी हैं। इतना स्पष्ट शब्द बेटा, ये निजरा अधिकार है, उसके निजरा नहीं है रंज मात्र। बाहर की क्रिया के अनुसार निजरा होती होती तो उन्हें गारंटी से निजरा होती, और शुद्ध भाव के अनुसार निजरा होती होती तो उन्हें गारंटी से निजरा होती। आगे तो यहां तक कहते हैं, और ये निजरा अधिकार वो है कि जो अंत में जाते जाते सम्यक दृष्टि के आठ अंगों का वर्णन भी किसी निजरा अधिकार में आचार्य कुंद देव ने किया। देखो तो दो गाथाएं जो मेरे सामने हैं, जो मैं आपको पढ़ूंगा, फिर अपन वहां पहुंचेंगे। दो 201 और 202 बहुत मार्मिक गाथाएं निजरा अधिकार की। देखो, परमाणु मित्रम पिय रायाधीनम दुबिज दे दस्ते, अपान मयानंतो अनप्रयम चादिशो अयानंतो तदेहो दिशम दिद्धि जीवा जीवे अयानंतो। इसका हेडिंग तो ऐसा है, कथम रागी न होती सम्य दृष्टि, सम्य दृष्टि जीव को राग क्यों नहीं होता, ऐसा है ना हेडिंग। तो कहते हैं परमाणु मात्र भी राग जिसके विद्यमान है, परमाणु मित्यम पी रागाधीनम दस्त विद्यदे जिसके विद्यमान है, नदिशो दानदी अपारम वो अपने आत्मा को नहीं जानता है, और जो अपने आत्मा सब्बागम धरो भी यद्यपि सर्व आगम का जानकार ही क्यों न हो, और जो आत्मा को नहीं जानता है वो अनात्मा को नहीं जानता है, और जो आत्मा और अनात्मा दोनों को नहीं जानता है वो सम्य दृष्टि कैसे हो सकता है। अब ये जो गाथाएं हैं ऐसी अटपटी हैं कि इनका अर्थ जो नहीं समझे तो बहुत अनर्थ कर सकता है। दो तीन बातें इसमें ऐसी हैं। पहली तो क्या है कि परमाणु मात्र भी राग जिसके विद्यमान हो वो सम्य दृष्टि नहीं है, और यहां कहते हैं कि दसवें गुण स्थान तक राग होता है और गुण स्थान में हो जाता है, एकदम परस्पर विरोध दिखाई देता है कि नहीं देता है। तो यहां पर परमाणु मात्र राग का अर्थ राग की सत्ता होने से नहीं है, राग धर्म है, राग मैं हूं, राग मेरा है, राग की क्रिया का कर्ता भोक्ता मैं हूं, राग सुख स्वरूप है, राग करने से मेरे को सुख की प्राप्ति होगी, ऐसी मान्यता उसका नाम है परमाणु मात्र राग होना। सोनला जी ऐसा अर्थ अपने मन की अर्थ नहीं करेगा, भाषा तो ऐसी परमाणु मात्र राग भी है। एक दूसरी बात, सब्बागम धरो भी सर्व आगम को जानने वाला हो तभी वो सम्य दृष्टि नहीं, और शास्त्र में ये लिखा है कि जो मिथ्या दृष्टि है वो सर्वागम को जान ही नहीं सकते हैं, वे द्वादश अंग के पास ही हो ही नहीं सकते हैं, जो सिर्फ को भी हो ही नहीं सकते, और जो कहते सब आगम को जाने तो भी वो सम्य दृष्टि नहीं है। तो यहां इसका भी अर्थ है कि 11 अंग और 9 पूर्व जो सम्य दर्शन के बिना भी कोई पढ़ सकता है अधिक से अधिक, ये उसकी बात है, इसको यहां सर्वागम कहा है, यहां द्वादश अंग नहीं लेना, ये स्पेशल अर्थ है। आचार्यों ने किया, अमरचंद ने, जयसेन ने, सबने, और वो ऐसा जीव आत्मा को नहीं जानता है, आत्मा को नहीं जानता है माने उसे आत्मा का अनुभव नहीं है, शास्त्रों से पढ़ के भले ही जाना होगा, गुरु के मुख से सुन के भले ही जाना होगा, लेकिन उसे आत्मा का अनुभव नहीं है, और वो आत्मा का अनुभव नहीं है तो वो अनात्मा को भी नहीं जानता, अनात्मा माने ये आत्मा नहीं, क्यों, क्योंकि जब आत्मा का ज्ञान नहीं है तो ये आत्मा नहीं है कैसे जानेंगे। आप नींबू को नहीं पहचानते हैं और मैं आपको संतरा दिखाऊं तो आप कह सकते हैं कि ये नींबू नहीं है, नींबू को जानते हो तो फिर कह सकते हैं कि ये नींबू नहीं है, तो ऐसे ही जो आत्मा नहीं है इसका नाम अनात्मा है, तो कब कह सकते हैं जब आत्मा को जानते हैं, तो जिसने आत्मा को नहीं जाना उसने अनात्मा को भी नहीं जाना। जो लोग ऐसा कहते हैं ना अनादिकाल से इस आत्मा ने पर कोई जाना और अपने को जाना ही नहीं, इस बात में कोई दम नहीं है। उसे आत्मा का ज्ञान भी नहीं है और पर का भी ज्ञान नहीं है। इसका अर्थ नहीं कि पर जानने में नहीं आया है, जानने में तो आया है, लेकिन पर का सच्चा स्वरूप जानने में, सच्चा स्वरूप जानने का नाम यहां जानना है और उल्टा सीधा जाने उसका नाम जानना नहीं है। जब वो कोई निषेध करता है तो अज्ञानी जानता ही नहीं है तौर पर को, तो सास में लगा दोनों को जानता है, लेकिन उसका अर्थ सच्चा जानता है ऐसा अर्थ नहीं है। उसका मतलब जानना मात्र है, सच्चे झूठे की बात नहीं है। और जब ये कहते हैं कि वो जानता ही नहीं है दोनों को, तो वहां पर वो सच्चा नहीं जानता है ऐसा अर्थ। क्यों? एक आदमी था वो बिना पढ़ा लिखा था, लेकिन उसने मेहनत करके और अपने हस्ताक्षर करना सीख लिया। ठीक है, मोहनलाल सेठी ऐसा लिखना सीख, कितना सीख लिया बस और कुछ नहीं। अभी कोई आदमी आता कि साहब साइन कर दो, तो पहले अंगूठा लगाना पड़ता था। अंगूठा लगाते थे सारी दुनिया जान जाती थी कि ये आदमी बिना पढ़ा लिखा है, तो बड़ा अपमान होता था। और अब साइन करते हैं तो फटाफट लेकर लिख दिया, साइन कर दिया, साइन कर दिया तो मैं पढ़ा लिखा हूं ऐसा सबने जान लिया। मैं पढ़ा लिखा तो नहीं हूं, लेकिन सबने क्या जान लिया, मैं पढ़ा लिखा हूं। पहले तो बहुत मान मिला, बहुत अच्छा लगा, लेकिन बाद में वही तकलीफ हुई हो गई। तो क्या हुआ कि तुम पढ़े लिखे हो गए, हाँ पढ़े लिखे हो गए, कौन सी क्लास तक, कि हम अपनी मौत पढ़े हैं। क्या मतलब कि जो आदमी सामने हस्ताक्षर करने के लिए बोलता है तो उसने क्या लिखा वो तो हम पढ़ नहीं सकते, और अपने को पढ़ा लिखा मान के बैठ गए हैं, इसलिए एक कह नहीं सकते कि हमने पढ़ नहीं सकते। अब बिना ही पढ़े ऐसा ऐसा करते रहते हैं और साइन कर देते हैं तो मौत पड़े कि नहीं पड़े बोलिए। उसमें ना मालूम क्या लिखा है कि 1,00,000 रुपया तुमसे लेना है देना है, कुछ जानते नहीं है और साइन ठोकते हैं। तो ऐसे ही समझ लो कि अज्ञानी जीव अपनी मौत पड़े हैं, उन्हें अपनी मौत का ज्ञान है। शास्त्र पड़े हैं तो अपनी मौत पड़े हैं, क्योंकि वह सच्चा मर्म तो ख्याल में आता नहीं है। और हमने बहुत पढ़ा, हमने बहुत पढ़ा, हमने सब जाना, हम सब जानते हैं, इतना अभिमान हो गया कि हम सब जानते हैं। मैंने ऐसा देखा, मैंने एक पंडित जी से पूछा कि आपने मुक्त मार्ग प्रकाशक पढ़ा, तो हमने सब पढ़े। मैंने वो तो ठीक है सब तो पढ़ा ही है, लेकिन मुक्त मार्ग प्रकाशक पढ़ा तो सैकड़ों ग्रंथ पढ़े। तो ये नहीं बोलेगा कि मुक्त मार्ग प्रकाशक पढ़ा, ना ये बोलेगा कि नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा तो कहना नहीं चाहता कि अपमान हो जाएगा, और पढ़ा कहता है तो यदि पूछ लिया कि वो 8वें अध्याय में क्या है तो बताना पड़ेगा। ये बहुत ग्रंथ पढ़े हैं, सैकड़ों ग्रंथ पढ़े हैं, जिंदगी पढ़ने पढ़ने में बीती है, हमने पढ़ाई के अलावा किया ही क्या? जवाब नहीं देगा, सीधा जवाब दे तो पंडित का। वह सबसे बड़ा पंडित तो वो माना जाता है तो उसने क्या कहा तो किसी की समझ में नहीं आए और उसकी भी समझ में नहीं आए। गोलम गोल गोलम गोल गोलम गोल गोलम गोल क्यों यहां कह रहे हैं कि देखो ये समय सार पढ़ने का मतलब है, ऐसे समय सार की गाथा पढ़ने से समय सार पढ़ना नहीं होता। परमाणु मात्र भी राग जिसके विद्यमान है वो आत्मा को नहीं जानता है, भले ही सारे शास्त्रों को पढ़ा हो। यहां इसका अर्थ यह है कि जो राग में उपादेय बुद्धि रखता है, जिसने 11 अंग और 9 पूर्व पढ़े हैं, ऐसा आदमी शास्त्रों में आत्मा को पढ़ करके भी तो भी वो आत्मा का वास्तविक स्वरूप नहीं जानता, और आत्मा का स्वरूप नहीं जानता तो अनात्मा का स्वरूप भी नहीं जानता, और आत्मा और अनात्मा को नहीं जानता वो सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है। तो उसी प्रकरण में चल रहा है कि अपने को सम्यक दृष्टि मान लिया है और खुलाए हैं गाल जिसने उठाया गर्दन ऊपर को, और सम्यक दृष्टि को तो बंद होता नहीं है, इसलिए मैं खूब भोग भोगो, जितना अधिक भोग भोगे उतनी अधिक निद्रा होगी, ऐसे लोगों के लिए एक आता है। तो वो कहते हैं क्या करें, तुम ही कहते हो कि सम्यक दृष्टि के भोग निद्रा के हेतु, और तुम ही कहते हो कि हम ऐसा माने तो हम गलती करते हैं। तुम वही बात कहो तो सच्ची और हम वही बात कहें तो झूठी, क्यों सच्ची है? एक सेठ है, करोड़ों रुपया उसके पास है, मैंने 1,00,000 रुपया दान दिए, देख लो मेरा हो जाता, चल खाने को नहीं है, 500 महीना की नौकरी करता है, ऐसा 1,25,00,000 मेरा लिख लो, है ना? उसका सच्चा है कि झूठा? और लोग लिखेंगे क्यों नहीं लगता सर, क्यों नहीं लगता? देखा मेरा तुमने 1,00,000 लिखा है, मैं 1,25,00,000 लिखाता हूं, सब दोगे कब? देने की बात कहां है, लिखाने की बात है ना? यहां तो यही कहा है कि जिसको लिखाना हो वो लिखा दो, आपने यही कहा है ना, जिसको लिखाना हो लिखा दो, तो मैं लिखाता हूं, तो दोगे कब? जब होंगे तब देंगे, तब इस भव में अगले भव में जब होंगे तब, तो देखो दोनों एक बात कह रहे, लेकिन सारा जगत एक की बात को मानता है और दूसरे की बात को नहीं मानता। तो जिसको आत्मा का स्वरूप जानते हैं, राग का स्वरूप जानते हैं, राग में जिसकी सुख बुद्धि नहीं है, भोग में जिसकी सुख बुद्धि नहीं है, ऐसा जीव भोग भोगे तो भी निर्जरा, और जिसके भोग में सुख बुद्धि है वो भोग नहीं भोगे तो भी आश्रम निर्जरा नहीं होती है। ये बात कि भाई हमने ये बात तेरे से कही, कौन सी कही? तो संबंध इसी के भोग निर्जरा के हेतु है, तो तूने उसमें से भोग की पुष्टि निकाली? ऐसा समय सार पड़ा है तूने? तो ये बात तो ऐसी हुई कि भाई तुम भाई भाई आपस में क्यों लड़ते हो? तो उसमें क्या हो गया? भरत और बाहुबली भी तो लड़े थे ना, ये तो अनादि की परंपरा चली आ रही है। अच्छा तो तूने ऐसा ही आदि पुराण पढ़ा है, आदि पुराण में से तूने यही निकाला है क्या कि भाई भाइयों को लड़ना चाहिए? लेकिन आगे क्या हुआ ये भी पढ़ा के नहीं पढ़ा कि बाहुबली ने फिर दीक्षा ले ली थी, तो तुम में से कौन सा भाई दीक्षा लेने वाला है? कि नहीं हमने तो यहीं तक पढ़ा था कि भी लड़े बस। एक हाल में सत्य हरिश्चंद्र नाटक हो रहा था, भारतेंदु हरिश्चंद्र का लिखा हुआ, और जब सब लोग वहां से नाटक देखकर बाहर निकले तो पत्रकार लोग जनता का मत क्या है, जनता को नाटक कैसा लगा, ये पूछने के लिए हरेक के पास पहुंचे। तो एक मारवाड़ी पगड़ी बांधे निकले उसने हरिश्चंद्र को देखकर, नाटक देखकर, बोले तो क्यों सेठ साहब नाटक कैसा लगा? तो बहुत अच्छा, इससे क्या शिक्षा ली आपने, क्या सीखा? के सत्य बोलवा में काई माल नथी, हरिश्चंद्र जैसा भिखारी बनना हो राजा से तो सत्य बोले, पत्नी ही को बेच दे, बेटा भी बेच दे, भंगी के यहां नौकरी करना हो श्मशान घाट पर तो सत्य बोले, ये सीखा मैंने। तो मैं पूछता हूं कि महाकवि हरिश्चंद्र ने जो हरिश्चंद्र नाटक लिखा ना, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा राजा हरिश्चंद्र नाटक, तो उसने कभी ये सोचा भी नहीं होगा जिनने वो नाटक किया उनके दिमाग में ये कभी कल्पना भी नहीं आई होगी कि कोई आदमी हमारे इस हरिश्चंद्र नाटक से ऐसी भी शिक्षा ले सकता है। क्यों? ऐसे ही भगवान महावीर से लेकर अज्ञानी धर्मात्मा चौथे गुणस्थान भक्ति जीवों ने जब ये कहा होगा कि भोग ज्ञानवंत के भोग निर्जरा हेतु हैं, तो उनके दिमाग में एक कल्पना भी नहीं आई होगी कि कुछ लोग कहेंगे कि भोग निर्जरा के कारण है तो खूब डट के भोगो, जितना भोगेंगे उतनी निर्जरा हो जाएगी। क्यों? लेकिन ऐसा अर्थ निकालने वाले लोग हैं कि उनकी चर्चा उन्होंने यहां पर की है कि भाई जिनको भोगने का रस है वे तो मिथ्या दृष्टि है और उनको तो बंद होता ही है, लेकिन बंद कैसे होता है? भोगने की क्रिया से नहीं, कैसे? भोगने के भाव से, है ना? कलश निकालो, पर भोगने से बंद ना, पर भोगने से भाव के भाव से तो बंद होता है, ऐसा है क्या? नहीं है कलश कौन सा? देखो देखो संदेश इनकाउंट, कर्म करना ज्ञानियों को उचित हो सकता नहीं, फिर भी भोग हो भोगने से बंध ना। यद्यपि भोगने से बंध नहीं होता है, पर भोगने के भाव से तो बंध होता है ना। इसलिए कि भोगने में भोगने की भावना क्यों करता है, अपने आत्मा में रमण क्यों नहीं करता है। जब तेरे से कहा था कि सम्म ऋषि के भोग मंदिरा के हेतु है, उसका अर्थ ये नहीं था कि तू खूब भोग भोग, उसका अर्थ तो ये था कि सम्यक दृष्टि भोग के काल में भी आत्मा में रत रहते हैं। ये न किया कि भोगने की क्रिया से बंध नहीं होता है, लेकिन भोगने का जो भाव हुआ उससे तो बंध होता ही है कि नहीं। महात्मा गांधी ने वो आंदोलन चलाया था ना, असहयोग आंदोलन, और वो क्या करते थे, जब कोई ऐसी बात होती तो उपवास कर लेते, 20 उपवास 25 उपवास, जेल में उन्हें डाल देते थे, जेल में उपवास कर लेते। तो अंग्रेज लोग क्या करते थे, वो जानते थे कि गांधी बुड्ढा है, जेल में मर गया तो हिंदुस्तान में जितने अंग्रेज हैं एक जिंदा नहीं बचेगा, लंदन कोई वापस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जानते थे क्योंकि इतना लोकप्रिय है, इसलिए जेल में तो डाला लेकिन हर हालत में सुरक्षित रहना चाहिए, और वे खाना नहीं खाएंगे तो गड़बड़ तो होगी ही ना। तो उन्हें जबरदस्ती दूध पिलाते थे, वो पीते नहीं थे, तो मुंह में ऐसी नली डालते और ऊपर से नली में दूध डालते, अगर कर पी नहीं अंदर चला जाता, एक जबरदस्ती उन्हें दूध पिला देते थे। तो बाद में लोगों ने सुना तो गांधी जी ने अनशन किया तो अंग्रेजों ने जबरदस्ती दूध पिला दिया। अब जेल में खाना अच्छा तो मिलता ही नहीं था, तो दूध भी नहीं मिलता था, तो बहुत से लोगों ने दूध पीने के लिए अनशन किया। क्या क्या नहीं खाएंगे, और जो आएंगे दूध पिलाएंगे, तो जब वे आए तो थोड़ा सा किया और फटाफट करके बोलो। दोनों में दूध, गांधी जी तो दूध नहीं पीते थे, नहीं पीना है इसलिए, और उन्हें जबरदस्ती दूध पिला दिया तो उनका उपवास भंग नहीं हुआ। लेकिन जो यही सोच रहे थे कि अब जो मुझे आएंगे वो नली डाल के दूध पिलाएंगे, क्यों दोनों फर्क हो गया ना। ज्ञानी जनों को तो भोग की रुचि नहीं है, वो तो गांधी की जैसे जबरदस्ती जैसे भोग आ पड़े वैसे भोगते हैं, और अज्ञानी को भोग में रुचि है और भोग से बंध नहीं होता है ऐसा कहकर भोगने के भाव कर रहा है, भोगनों की मान्यता कर रहा है, तो वो बंध को प्राप्त होगा ही होगा। ये उपदेश की भाषा नहीं थी कि भोग से बंध नहीं होता तो तू भोग भोग, ये तो वस्तु के स्वरूप का प्रतिपादन था। जब वो ज्ञानी जीव जब वो भोग के काल में भी होता, जब वो भोगता है तब नहीं, आगे तो ऐसा ही लिखा कि ज्ञानी जन भोगते हैं कि नहीं भोगते हम नहीं जानते, ते के न जानी महे, वो ज्ञानी भोग भोगते हैं कि नहीं भोगते हैं ये हम नहीं जानते। माने वास्तव में तो वे भोग भोगते ही नहीं, भोगने की क्रिया उनकी देखी जाती है, वे भोगों को भोगते नहीं, वो भोगों को भुगतते हैं। देखो 153वां कलश, जिसे फल की चाह ना वह करे यह जचता नहीं, यदि विवशता बस आ पड़े तो बात ही कुछ और है। यदि अकंप ज्ञान स्वभाव में फिर रहे जो बेज्ञानी जन, सब कर्म करते या नहीं है कौन जाने। बेज्ञ जन, जो ज्ञानी जन अपने आत्मा में लीन है और भोगों में से सुख बुद्धि जिनके निकल गई है और भोगों की रंज मात्र भी भावना जिनकी दृष्टि में महत्वपूर्ण नहीं रही है और जो आत्मा में की भावना में ही गत है, ऐसे ज्ञानी को भोगते हुए देख करके भी वो भोगते हैं कि नहीं भोगते कौन जाने। बनारसी दास ने तो ऐसा लिखा है, तिनको करता हम तो न कहेंगे, तुम कहो तो कहो कौन, जो भोगत भोग उदास रहेंगे, जो भोगों को भोगते हुए भी उदास रहेंगे, तिनको करता हम तो न कहेंगे, उनको हम तो करता नहीं कहेंगे। तो वास्तव में भोगों के अकर्ता हैं, इसलिए भोगों को नहीं भोगते हैं ऐसा कहा जाता है, इसलिए उन्हें बंध नहीं होता। तो भोग ज्ञानियों के भोगों बंध नहीं होता है, सम्यक ऋषियों को उसका वास्तविक अर्थ समझना ना समझें तो इन बातों को सुनकर अनर्थ भी हो सकता है। समय सार कच्चा पारा है, बच जाए तो भयंकर से भयंकर बीमारी दूर हो जाए और ना बचे तो मर जाए। आयुर्वेद में एक ब्राह्मी बूटी होती है, नाम सुना कभी, तो ब्राह्मी बूटी बहुत ठंडी होती है, लेकिन जो गर्मी चढ़ जाती है ना, पागलपन हो जाए गर्मी चढ़ जाने से, तो जब पागलपन हो जाए और हजारों दवाइयां खिलाएं और उनसे ठीक नहीं हो और अंत में ब्राह्मी बूटी पिलाई जाती है और ब्राह्मी बूटी पिलाएं तो गारंटी से पागलपन ठीक हो जाए। लेकिन एक उसमें दिक्कत है, वो पचती नहीं है, जो पियो ना तो वोमिटिंग हो जाती है और वोमिटिंग हो तो जहां भी शरीर पर उसका छांटा पड़ जाए वहीं कोढ़ हो जाता है, कुष्ठ रोग हो जाता है। क्या कितनी खतरनाक है कि और अंदर पचेगी नहीं और वोमिटिंग होगी तो छांटे पड़ते ना, हाथ पर पड़ा तो यहां कोढ़ हो जाएगा, पैर पर पड़ा तो पैर पर कोढ़ हो जाएगा। तो उसे कहां पिलाया जाता है जानू आपको, नदी की धार में बैठा के पिलाया जाता है, और जहां पानी बह रहा हो जिस तरफ को धार जा रही हो उस तरफ को मुंह करके बैठाया जाता है और पानी में यहां तक डुबा दिया जाता है गले का अंदर, तो इतना मुंह खाली इतना सुर निकला रहा। फिर उसे वो पानी में पिलाते हैं, यदि पच गई तो काम हो ही जाएगा और नहीं पची वोमिटिंग हुई तो वो पानी में गिरेगा और नदी की धार के साथ आगे बह जाएगा, अब उस आदमी के शरीर पर छांटा नहीं पड़ेगा क्योंकि वो तो पानी में डूबा हुआ है ना, ऐसा पिलाई जाती है। और वोमिटिंग भी हो जाएगी तो पेट में जाएगी तो थोड़ी बहुत तो रह ही जाएगी, गले में लगी रह जाएगी, आंत में लगी रह जाएगी, आमाशय में लगी रह जाएगी, जितनी भी रह जाएगी वो उतना लाभ तो करेगी करेगी और करेगी। इतनी खतरनाक औषधि है, लेकिन जब दूसरा इलाज नहीं हो तो पिलानी पड़ती है कि नहीं पिलानी पड़ती है। ऐसे ही समय सार ब्राह्मी बूटी है कि मिथ्यात्व का भयंकर पागलपन समान हो गया हो, कोई यहां इलाज नहीं करे तो समय सार की ब्राह्मी बूटी घूंट घूंट के पिलाई जाती है, लेकिन ये भी दुनिया को आसानी से पचती नहीं है। कैसे पचेगी, सम्य ऋषि के भोग निद्रा हेतु में पचने जैसी बात है ना, और परोपकार का भाव बंध का कारण है वो धर्म नहीं है, ये पचने जैसी बात है। और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, आज तक किसी ने कुछ किया ही नहीं है, ये सारे सामान्य जगत को पचने जैसी बात है। क्यों सोनलाल जी, और पाप के समान पुण्य भी हो है, ये सामान्य लोगों को पचने जैसी बात है। जो पिछले इतने दिनों से अपन बात कर रहे हैं, कितने व्याख्यान हो गए, 16 हो चुके ना, 17वां है ना, जो अपन 17 घंटे से जो बात कर रहे हैं इसमें ऐसी सैकड़ों बातें हैं कि जगत के जीवों के गले नहीं उतरे, जैनियों के गले नहीं उतरे, संतों के गले नहीं उतरे, ख्याल में है ना। इसमें लिखा है महाभक्त पालने वाले और समिति पालने वालों के गले नहीं उतरे, ऐसा ऐसे बात है, गले के अंदर ही नहीं जाती है, अंदर जाए तो पचती नहीं है बाबूजी, वोमिटिंग हो जाती है। नहीं पचने का क्या अर्थ है भाई साहब? तो पचती नहीं है का मतलब क्या है? कोई चीज अपन खाएं और पचे नहीं तो उसका क्या मतलब होता है? कथा हमको दूध पचता नहीं है, बच्चे को दूध पच ही नहीं रहा, माँ डॉक्टर से कहती ना तो दूध पच रहा कि नहीं पच रहा, छोड़ो होता क्या है तुम्हें बताओ, दूध पिलाते हो तो होता क्या? पेशाब दस्त लग जाते, कब्जियत हो जाती है और वोमिटिंग हो जाती है। यही तो बोलते कि नहीं बोलते? इसका मतलब है नहीं पचना, दस्त लगना में इतनी तो है कि पेट में वो ठहरी तो और पूरे पेट में से पास तो हुई, इतनी खतरनाक बात तो नहीं है। और कब्ज हो जाना तो पेट ही में ठहर गई, निकलती नहीं है। लेकिन वोमिटिंग सबसे ज्यादा खतरनाक है कि शरीर ने एक्सेप्ट ही नहीं किया, यहां से ही बाहर उछाल के फेंक दिया। तो नहीं पचने की तीन अवस्थाएं होती हैं, कौन कौन सी? कब्ज हो जाना, दस्त लग जाना और वोमिटिंग हो जाना। तो समय साल नहीं पचता है उसका क्या मतलब है? तीन अवस्थाएं होंगी कि या तो दस्त लग जाएंगे, समझे ना, या कब्ज हो जाएगी और या वोमिटिंग हो जाएगी। तो कैसे मालूम पड़ेगा किसको क्या हुआ? बेड को कैसे मालूम पड़ेगा इसको क्या हुआ? तो हम यहां ये समझा रहे हैं कि एक दूसरे दिव का कर्ता नहीं है, ज्ञानी के भोग निद्रा के हेतु है, पाप के समान पुण्य भी हे हैं, और यहीं उससे खड़ा हो जाए कि क्या बकते हो तुम, देश को बर्बाद करोगे, तुम जैसे आदमी हमने नहीं देखे हैं, सबको नपुंसक बनाओगे क्या? कोई किसी करता नहीं है, धरता नहीं है, वैसे ही लोग काम नहीं करते हैं, आलसी हैं, और तुम और चर्जा बेटा सूली पे भला करे भगवान। यहीं बकने लग जाए तो समझ लेना वोमिटिंग हो गई। समझ में आए ना? लेकिन यहां तो नहीं बोले, लेकिन टीम इतना कार है फिर जाए और दूसरे दिन कहेंगे चलो भैया तो तुम सुनने हैं कि हमें नहीं जाना तुम ही जाओ, मैं ये बातें सुनने के लिए हमें जाना है। तो अंदर तो रही वो 24 घंटे तक, लेकिन अंदर शरीर ने उसे ग्रहण नहीं किया, देसी की देसी पतले दस्तों में निकल गई। क्यों? एक्सेप्ट नहीं किया शरीर ने, तो समझ लो गए। और अगर भैया वो तो बहुत ऊंची बातें हैं तो समझ लो कि वो क्या हो गई? कब्जियत हो गई। हमारी तो समझ में आती नहीं है, पचती नहीं है, तीन अवस्थाएं होती हैं। और जिसको वो ब्राह्मणी बूटी अंदर में जाए, शरीर उसको एब्जॉर्ब कर ले, ना दस्त लगे, ना वोमिटिंग हो, ना कब्जियत हो, तो गारंटी से उसका पागलपन दूर हो जाए, उजागर के एक्सेप्ट हो जाए कि बहुत बढ़िया बात है, तो हमने आज तक सुनी नहीं थी, अद्भुत अपूर्व बात है, ऐसा अंदर में भाव आए, समझे ना, और उसको घोलन चलना शुरू हो जाए कि गजब हो गया, क्या कह रहे थे, एक दूसरे को करता नहीं है, मैं तो कितना आज तक ऐसा उल्टा सीधा मान रहा था, और मैं तो ऐसा समझ रहा था, मैं तो ऐसा समझ रहा था, आज तो मेरी समझ में आया है, समझ लो पच गई, पच गई तो अनादिकालीन अज्ञान है, नष्ट हो जाए। तो ये समय सार की जो बात है वो तो ब्राह्मी बूटी है। ये बात जो मैं आज कह रहा हूं ना, 32 साल बाद, बाबू जी 32 साल पहले जब मैं जयपुर में आया था इंदौर से परिसर में, बड़े दीवान जी के मंदिर में व्याख्यान कर रहा था, और पंडित चैनसुर दास जी उस सभा के अध्यक्ष थे, तो उसके बात मैंने वहां भी कही थी 32 साल पहले उस सभा में। उस दिन तो पंडित जी ने कुछ नहीं कहा, और दूसरे दिन पंडित जी ने आगे कहा कि ये बात बिल्कुल सत्य है जो डॉक्टर भारत ने कल ये बात कही थी, वो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि मैंने एक दैत्य से जाके पूछा कि ऐसी कोई जड़ी बूटी होती है क्या? और ऐसा होता है तो उन्होंने कहा कि हाँ हाँ होती है। वो तो बहुत बड़े आदमी थे, समाज में उनकी बहुत प्रतिष्ठा थी, चैनसुर दास जी की, महान थे, विद्वान थे। उन्होंने सील लगाई, सब लोग समझे कि भाई जो भारत साहब बहुत खुश होंगे, कि पंडित जी ने सील लगाई और पंडित जी ने भी सोचा कि इनको अच्छा लगेगा। मैं तो उनके सामने बच्चा ही था, वे तो मेरे पिताजी के पिताजी की उम्र के थे, मैं तो वहां 30-32 वर्ष का, वे होंगे 60-65 वर्ष। लेकिन मैंने कहा कि एक बात मेरे को बताओ कि यदि वो ये दैत्य कह देता कि ये बात ऐसी नहीं है आयुर्वेद में तो क्या होता। उसने कहा कि ऐसा है तो तुम आपने स्वीकार कर लिया, लेकिन यदि वो मना कर देता तो क्या होता। अरे पंडित जी आके कह देते दूसरे दिन कि मैंने वैद्य से पूछा तो उस वैद्य ने ऐसा कहा कि ऐसी कोई बूटी मूटी नहीं होती है, तो मेरा क्या होता, कल से मेरा व्याख्यान होता कि नहीं होता। कैलाश जी और कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे को इस बात का विकल्प है कि यदि ऐसा होता तो क्या होता। मेरी दृष्टि में यदि ये बात गलत निकल जाती तो भी मैं अच्छा वैद्य नहीं हूं ये साबित होता। ख्याल में है ना, क्योंकि उदाहरण गलत निकल गया। लेकिन इससे मैंने जो सिद्धांत प्रतिपादन किया है समय सार का, कि समय सार ऐसी चीज है कि वो पच जाए तो संसार का अभाव हो जाए, अनंत दुख दूर हो जाए, और ना पचे तो ऐसी हालत होती है। ये बात तो सत्य है नहीं, जब ये बात झूठी हो तो पंडित कुमकुम झूठा होगा। उदाहरण तो हम कहीं से भी सुनते हैं, हम कोई आयुर्वेद के विद्वान थोड़ी हैं, हम सारी दुनिया के विद्वान थोड़ी हैं, जो सुनते हैं वो उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण की सत्यता और झूठेपन से सिद्धांत की सत्यता और झूठेपन का नाप नहीं हो सकता। क्या ये बात सेंट पर एक खासकर निर्जराधिकार के संदर्भ में, कि निर्जराधिकार में ऐसी बात कही कि सम्यक दृष्टि के भोग निर्जरा हेतु है, हाल में ऐसी बात कही है तो ये बहुत ही नई पचने जैसी बात है। लेकिन इसका जो वास्तविक अर्थ है गहराई से जो लोग समझेंगे उन्हें ये बात जरूर ख्याल में आ जाएगी कि इसके अंदर कितनी गहराई का रहस्य है। इस तरह निर्जराधिकार की चर्चा लगभग पूरी हुई। थोड़ी चर्चा जो 8 अंगों की इस अंत में की है और 8 अंगों के संदर्भ में 7 भयों की चर्चा की है, वो चर्चा कल करेंगे और उसके बाद में आगे प्रबंध अधिकार चलेगा।